exemption. शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले। जो विश्व को रोशनी देने वाले है वह स्वयं क्या होगे? स्वयं अंधकार में तो नहीं होंगे ना, दीपक के माफिक तो नहीं हो ना। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको क्या कहेंगे?
अपवित्र।
अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसे क्या कहेंगे?
अंधकार।
तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया है। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी? ऐसे तो नहीं है। तो बाबा कह रहे शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। जो विश्व में रोशनी देने वाला है वो स्वयं अंधकार में नहीं हो सकता है। दीपक के माफिक तो नहीं होना, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, तो अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है अगर कि किसी भी विकार का अंश है तो उसे रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे, अंधकार खत्म हो गया। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते तो उसमें अंधकार भाग रहा है ऐसा दिखाते हैं। तो हम कौन है? ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य। कर्तव्य क्या है हमारा? विश्व का अंधकार मिटाना। तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, रोशनी फैल रही है, पवित्रता की किरणें फैल रही है और संसार का अंधकार समाप्त हो रहा है। बाबा ने कभी कहा है जो मास्टर ज्ञान सूर्य के समान में स्थित रहते हैं उनसे क्या हो जाता है? मास्टर ज्ञान सूर्य के समान में अगर स्थित हो तो किसी भी वातावरण को बदल सकते हो। अगर दुख का वातावरण है तो वहां पर सुख आ सकता है, उदासी का वातावरण है तो वहां पर उमंग उत्साह आ सकता है, विकार का वातावरण हो तो वहां पर निर्विकारिता आ सकती है। किसी भी तरह का वातावरण मास्टर ज्ञान सूर्य के समान से बदला जा सकता है। हमारे कार्य क्षेत्र का वातावरण हम बदल सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, मैं प्रकाश पुंज हूं, ज्योति हूं, प्रकाश का कण हूं और मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, रोशनी फैल रही है, उजियारा हो रहा है। और जहां प्रकाश है, हम सारे विश्व को प्रकाश देने वाले, तो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। अंधकार अर्थात विकार, विकार का अंश भी होना अर्थात अंधकार। तो मैं आत्मा संपूर्ण प्रकाश हूं, संपूर्ण ज्ञान सूर्य हूं। तो हम अंधकार मिटाने वाली आत्मा है, किसी भी विकार का अंश को रोशनी नहीं कहेंगे, अंश भी ना हो, ऐसी संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर हो। फिर बाबा कह रहे इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं है। पहले भी सुनाया था कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही क्या है, प्रतिज्ञा अर्थात
जान जाए,
जान जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए,
जान पहले चले जाए,
कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी सामना करना पड़े, भूखा रहना पड़े, मरना पड़े, परंतु प्रतिज्ञा न जाए। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करनी है, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, अखंड प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं है तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। वचन अर्थात वचन, वचन दे दिया, संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं, केवल मन से, अंतर मन से, प्राणों की गहराई से, दृढ़ता से, संपूर्ण सोच समझ कर। कहने से काम, कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने में वालों में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे की प्रतिज्ञा? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमना भाव भी बनाना, और मनमना भाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है, अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे इसके लिए कर लो, इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा है और हुआ ही पड़ा है। दृढ़ प्रतिज्ञा है परंतु सहजता का भाव भी है, निश्चय भी है कि होगा ही, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अर्थात मन से की हुई प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अर्थात जान भी चले जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए, प्रतिज्ञा अर्थात परिस्थिति कमजोर, परिस्थिति शक्तिशाली ना हो, परिस्थिति प्रतिज्ञा क्या है, यह है दृढ़ प्रतिज्ञा। और उसमें यह सोचेंगे कि बाप ने कहा है और हुआ ही पड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है नहीं कर सकेंगे, लोग कहते हैं असंभव है, यह सब नहीं। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। अभी सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा क्या है?
सफलता होगा नहीं होगा।
सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा, ये थी फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा,
सफलता होगा ही होगा,
हाँ उसमें संशय है थोड़ा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात
सेकंड नंबर,
तो अर्थात
तोता,
तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। जान चली जाए पर प्रतिज्ञा न जाए, ऐसी अगर प्रतिज्ञा करो तो जान जा नहीं सकती, फिर जान को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले के ऊपर है। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारी फाइल है, कंप्लीट रिकॉर्ड, कितनी बार किस किसने प्रतिज्ञा की और कितनी बार तोड़ी। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना, क्या करना, फाइनल करना। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखा है, तो बाबा के सामने क्या आ जाता है, कोई सामने आज कहता है कि आज मैं प्रतिज्ञा करने वाला हूं, तो बाबा की आंखों के सामने कुछ उसको दिखाई देता है, क्या दिखता है, उसकी पुरानी फाइल दिखाई देती है सारी। तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है, एकदम भगवान भी घबरा जाता है कि ये फिर प्रतिज्ञा करने जा रहा है। प्रतिज्ञा करते हुए कोई दिखा कि तुरंत उसको दिखती है कि पुरानी सारी फाइल उसको देखता है फाइल में जगह है या नहीं। हर एक की फाइल बाबा के पास है, बस एक क्लिक किया, एंटर किया कि तुरंत सारी प्रतिज्ञाओं की लिस्ट सामने की हुई अब तक जो निभाई नहीं, और अभी वापस प्रतिज्ञा कर रहा है। तो बाबा को भी एकदम से कुछ हो जाता है, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसा करेंगे?
हाँ, हिम्मत है बच्चे मदद दे बाप,
वो तो है। फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? फाइल भर गई है, कागज ऐड करने की बात चल रही है देवेंद्र भाई, उसमें जगह नहीं है, नया कागज ऐड करने की बात है। तो यह है सेकंड नंबर वाले कि जो सोचते हैं तो पता नहीं होगा, तो ये तोता वाले जो है वो सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर वाले जो है वो वचन अर्थात वचन, जान चली जाए, कुछ भी सहन करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, जिएंगे मरेंगे तो प्रतिज्ञा के लिए, अटल अखंड प्रतिज्ञा जिनकी है, भीष्म प्रतिज्ञा जिनकी है, उनके मन में कोई संशय नहीं है। परिस्थिति प्रतिज्ञा के आगे कमजोर, प्रतिज्ञा शक्तिशाली, और फाइनल करने वाली प्रतिज्ञा, फाइल में कागज ऐड करने वाली नहीं, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा। इसके पहले वाली मुरली में भी तीन कारण बताए थे, कौन से, प्रतिज्ञा नहीं करते, प्रतिज्ञा करते हैं पर कर नहीं पाते, बहानेबाजी, अलबेलापन, और तीसरा
आलस,
अलबेलापन में आलस आ गया, दूर का चश्मा नजदीक का कमजोर है और दूर का तेज है, तीन कारण बताए, अलबेलापन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करो अलबेलापन के स्क्रू को तो दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगी। तो एक था अलबेलापन, दूसरा था बहानेबाजी, बहाने बनाना बहुत सारे, एक्सक्यूजेस, कारण, और तीसरा था दूसरों को देखना। बाबा आज कुछ और कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है।
मैं
वह एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं, देह अभिमान का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं शब्द ही कौन सा मैं? दो तीन मैं है, एक है देहभान का मैं जिसमें अहंकार की दुर्गंध है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। दूसरा है हीनता का मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकता, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, स्वयं में आत्मविश्वास की कमी, वो भी एक मैं है। ये मैंपन के दो रूप है, एक अभिमान और दूसरा हीनता, और फिर तीसरा मैं जो है वो आत्माभिमानी का मैं, वो सम्मान का मैं। बाबा ने कहा था ना सम्मान देना, चार प्रकार के सम्मान बताए थे ना, एक बाप के प्रति सम्मान, एक पढ़ाई के प्रति सम्मान रेगुलर पंक्चुअल, और एक था स्व के प्रति सम्मान, और चौथा था ब्राह्मण आत्माओं के प्रति सम्मान। लास्ट संडे की मुरली, पहला बाप के प्रति, दूसरा पढ़ाई के प्रति, तीसरा था स्व के प्रति सम्मान। उसमें दो बातें थी, एक तो सम्मान और दूसरा हीनता की भावना है, मैं ये नहीं कर सकता, मुश्किल है, होगा कि नहीं पता नहीं, ये इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इससे भी मुक्त, अहंकार से भी मुक्त और इससे भी मुक्त। चौथा था दूसरी आत्माओं के लिए अपने को चाहे जितना महान समझना है समझो, उसके लिए कोई बाबा की तरफ से ये छूट है, समझो महान, पर इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को बेवकूफ समझो, स्वयं तो समान में स्थित है कि मैं इस संसार की महान आत्मा हूं, परंतु ये है, ये तो ना तो अमृत वेला ठीक दिखता है इनका, ना तो मुरली में इतना इंटरेस्ट है ये लोगों को, ये तो व्यर्थ में अनर्गल बातों में लगे हुए हैं। तो दूसरों को हीन दृष्टि से देखना, बाबा ने उसमें कितनी सारी बातें कही थी, महान दृष्टि से देखो, शुभ भावना, शुभ कामना, अपनेपन की भावना, आत्मिक भावना, आगे बढ़ाने की भावना, उमंग उत्साह दिलाने की भावना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने की भावना, दूसरे की कमजोरी को अपनी कमजोरी समझ, उसे फैलाना नहीं, या फिर स्मृति की समर्थि से कमजोरी को परिवर्तन करना, दूसरे के विशेषताओं को देखना, अवगुणों को न देखना, अवगुणों को देखने का नेत्र बंद करना, उत्साह से भरना, उमंग से भरना, ये दूसरों के प्रति। तो समान स्वयं के लिए ठीक है, परंतु दूसरों को भी बुद्धिमान समझना, निर्बुद्धि नहीं समझना, किसी को मूर्ख नहीं समझना, बेवकूफ नहीं समझना, तो वो भी है। तो यहां बाबा कह रहे बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, कौन सा मैं? देहभान का मैं। मैं शब्द ही धोखा देता है, मैं यह समझता हूं, मैं ये समझता हूं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मैं ही यह कर सकता हूं, यह कला तो मुझ में ही है, करना है तो कर लो, मैं तो चलो देखता हूं कैसे करते हो, मेरे भी बगैर मैंने जो कहा वही ठीक है। एक है नम्रता से विचार प्रकट करना, पर जब फाइनल हो जाए सबका डिसीजन तो उसको स्वीकार करना, वो तो ठीक है, मैं ये समझता हूं यही राइट है, ये माया है, मैं ये समझता हूं और मेरी जो समझ है, मेरी जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, मेरे जो निष्कर्ष है, मैं जिस पर पहुंचा हूं बस यही राइट है और यही करना चाहिए, और तुम भी मानो कि ये राइट है, मैं राइट हूं, पहले मानो उसके बाद में बाकी की बात, तब तक नो डिस्कशन, पहले मानो कि मैं राइट हूं, बाकी चर्चा बाद में देखेंगे। ये अहंकार की भाषा है, यहां देहभान है, मैं राइट हूं क्योंकि मैं अनुभवी बहुत हूं, मैं पुराना बहुत हूं, मुझे मेरे पास 20 साल का अनुभव है, तो मैं जो कहता हूं वही राइट है, जरूरी नहीं तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम राइट होंगे, अनुभव तो बहुत ऊंची चीज है, अनुभव तो बढ़ता ही जाता है, हमारे पास जो अनुभव है किसी और के पास कुछ और अनुभव होगा, हर एक का अनुभव अपना अपना है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि यही राइट है। मैं यह समझता हूं, मैं ही यह कर सकता हूं, ये योग्यता केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं। मैंने जो कहा वह ठीक है, मैंने जो सोचा वह ठीक है, ये मैंपन के सारा विस्तार है। हमको हमारे मैपन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुख से दिन भर में बहुत सारी बातें निकलती है जिसमें इस तरह के मैपन होते हैं, वो स्वयं स्वयं को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप से यह मैपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं। यह है अहंकार वाले शब्द, अभी दूसरे है दिल शिकस्त वाले अर्थात हीन भावना वाले, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो कौन से है? मैं इतना सहन नहीं कर सकता, ये मेरी सहनशीलता के बाहर की बात है। अपने को एकदम इतना निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्या पार नहीं कर सकता, मुश्किल है, कठिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है ये करना, ये मेरे से नहीं होगा। समान भूल रहे हैं यहां पर, ये दूसरे एक छोर है अहंकार और दूसरा छोर है इस तरह की हीन भावना है। यह मैपन कमजोर करने वाला है। वो जो पहला मैपन है वो प्रतिज्ञा, वो भी वो धोखा देने वाला मैपन एक रीति से, ये कमजोर कर देता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, अपने जीवन में देखो, क्या यही मैपन संस्कार के रूप में, ये मैपन कहाँ है इसको ढूंढना है। अभी संस्कार में तो नहीं है कहीं, कोई मेरा एक ऐसा संस्कार तो नहीं, आदत ही बन गई है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, करने से पहले ही बोल देना कि ये नहीं होगा मेरे से। कोई काम दे दिया गया, कोई सेवा दे दी गई और पहले कह देने का ये नहीं होगा मेरे से, मुश्किल है, ये तो किया भी नहीं है। तो कोई संस्कार मैपन के रूप में कोई संस्कार बैठा हुआ है, फिर स्वभाव के रूप में स्वभाव संस्कार, फिर भाव के रूप में, भावना के रूप में अहंकार। मैपन सबसे सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म। कोई भावना में अहंकार है, भावना पॉजिटिव नेचर, ये वस्तु मेरी है। ये छोटे बच्चे छोटे, जब हम छोटे रहते तब से ये अहंकार हमारे मन में आ जाता है। छोटे बच्चे की कोई वस्तु ले लो तो वो कहता है ना, ये मेरी है, बोलता है ना, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। ये अहंकार का बीजारोपण वही से हो रहा है बचपन से। बचपन से ही अगर चॉकलेट भी ले लो तो वो रोता है, क्योंकि वो उसका है, उसको लगता है ये मेरा है। वस्तुओं में मेरापन और व्यक्तियों में मेरापन, ये व्यक्ति मेरी है, शी इज ही इज माइन, ये मेरा है। ये जितना गहराई होगी इस मेरेपन में, उतना ही मन में अशांत होगा। अगर कोई दूसरा उसके साथ हमको दिख जाए तो मन में हलचल, क्योंकि हमने अंतर से स्वीकार कर दिया कि ये व्यक्ति मेरा है। क्या कोई व्यक्ति मेरा हो सकता है? नहीं हो सकता है वास्तव में, ना तो पति पत्नी का है, ना पत्नी पति की, कोई किसी का नहीं है। हम मेरा मैं एक ही चीज है, अहंकार तो वहीं पे जुड़ा हुआ है ना, मेरी वस्तु है, उसका बीज भी मैं ही है, मेरा और मेरा जन्म ले रहा है मैं से। पजेसिवनेस, ये जो चीज है ये भी एक बहुत बड़ी माया है। वस्तुओं के प्रति तो ठीक, पर व्यक्तियों के प्रति पजेसिवनेस, कि ये मेरा ही है, इसको जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही ये सोचे, जो मुझे पसंद है वही इसको भी पसंद हो। जैसे पति पत्नियों के बीच होता है, पत्नी को लगता है इसके लिए ये ठीक है, वो सोचता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, पर वो उसके ऊपर थोपती है सब, जैसे वो ओवर केयरिंग हो जाता है कि ये ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। ये भी कलह का एक कारण बन जाता है वहां पर, बड़ा ही अलग रूप का और सूक्ष्ममय है ये पॉजिटिव। तो बाबा यहां भावना की बात करिए, भावनाओं में मैपन आ गया यहां पर। फिर बोल के रूप में, बोल में मैपन, ये मैं ही कर सकता हूं, मैंने ये सेवाएं की। अगर हम नहीं जाते इस सेवा में तो ये सेवा कभी सफल ना हो पाती। फिर संबंध संपर्क के रूप में मैपन, हमारी पहचान बहुत है, हमारी पहचान इतनी थी ना इसके लिए इतनी बड़ी सेवा हुई, ये वीआईपी आ ही नहीं सकता था यहां पर, हमारी पहचान थी। ऐसे थोड़े ना इतने समय से कांटेक्ट बनाए रखे है, हमने बनाए रखे है, इसके लिए तो आया ही। ये क्या है, मैपन ही है ना। संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। ये जो मैपन है इतने सूक्ष्म, इतने मिठास है इनमें, वो तो जो कह रहा है बस वही ढूंढ सकता है। उसको दूसरों को दिखेगा पर दूसरे बोलेंगे नहीं। शिवरात्रि पर यह मैमे की क्या करना है? बलि चढ़ानी। भक्त बेचारे ने तो, बेचारों ने तो क्या कर दिया? बकरे की मैमे करने वालों को बलि चढ़ाया। लेकिन है यह मैमे, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ा थोड़ी मैपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा। बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% है, ऐसा कहेगा? प्यार के लिए तो सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें प्यास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है कि परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रतिज्ञा कहने को, करने को कह रहे हैं। प्रतिज्ञा कैसी हो? दृढ़ हो, मन से हो, फाइनल करने वाली हो, फाइल ऐड करने वाली ना हो, और संपूर्ण प्रतिज्ञा हो। और प्रतिज्ञा को कमजोर करने वाली बात कौन सी है? एक ही शब्द है, मैं, जो कि बहुत धोखा देता है। तो मैं कहाँ कहाँ से निकालना है? स्वभाव से, संस्कार से, भाव से, भावना से, संबंध संपर्क से। इन पांचों चीजों में मैं कहाँ है उसको ढूंढना। बोल, छह बोल में भी मैपन। ये छह चीजों में से कहाँ कहाँ मैपन है उस मैं को ढूंढना और उसकी बलि चढ़ाना, उसको समाप्त करना। यह है प्रतिज्ञा के। अगर ये कर दो तो प्रतिज्ञा शक्तिशाली हो जाएगी। और प्रतिज्ञा कैसी हो? पावरफुल हो। परीक्षा पावरफुल ना हो, समस्या पावरफुल ना हो, प्रतिज्ञा पावरफुल। और बाबा ने समान दिया है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, विश्व का अंधकार मिटाने वाला हूं, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। तो मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात संपूर्ण रोशनी, अर्थात विकारों का अंश भी नहीं। तो ये दो चीजों पर काम करना आज, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और दूसरा मैपन कहाँ है उसको ढूंढना, उसको ढूंढना और उसको जानना ही उसको समाप्त करना है। क्योंकि पता चल गया है तो ज्यादा देर रहेगा नहीं। उसका ज्ञान, उसकी, उसका ज्ञान हो गया मतलब वो समाप्त हो गया, इतना समझ। केवल ज्ञान हो जाना ही उसको समाप्त कर देगा। रियलाइजेशन इटसेल्फ इज फ्रीडम। रियलाइजेशन ही मुक्ति है, लिबर्टी है। क्योंकि हमको अगर पता चल गया कि हमारे पाव में फोड़ा है और वो बढ़ रहा है, एक है कि भूले रहना कि मुझे तो फोड़ा है ही नहीं, मुझे बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप को, ये खतरनाक है थोड़ा। इसमें भी व्यक्ति भूला हुआ है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है कुछ, फोड़े से दर्द नहीं है पर फोड़ा है, पर वो भूला हुआ है अपने आप को। और दूसरा है उससे एक व्यक्ति मुक्त हो चुका है। तो जो मुक्त होने की अवस्था है वो बेहतर है, क्योंकि इसमें तो धोखा है। हमारे ओपीडी में कल एक पेशेंट आई थी, डायबिटिक पेशेंट, 2 महीने से सारी दवाई बंद कर दी, डायबिटीज की भी और बीपी की भी, और उसने कहा कि मुझे एकदम अच्छा लग रहा है। वो ये, मैं ये भूल गई हूं कि मुझे शुगर की बीमारी है और बीपी की बीमारी, मैं पूरी भूल चुकी हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। शुगर का रिपोर्ट 300 और 400 शुगर। तो एक ये अवस्था है कि जिसमें बीमारी है पर व्यक्ति भूला हुआ है, निश्चिंत है, पर उसे आने वाले उस संभावित खतरे का कोई अंदाजा नहीं है जो कभी भी आ सकता है। एक ये अवस्था है, इस ये भी भूला हुआ है। दूसरा है कि रियलाइजेशन की, नहीं मुझे ये बीमारी है और उससे मुझे ये रियलाइजेशन ही, भले वो उसे मुक्तता पर कंट्रोल तो रखेगा ये शारीरिक बीमारी के बारे में, पर मानसिक बीमारी का जैसे हमें पता चलता है कि ये मुझ में है, और जितना गहराई से पता चलता है, वो जो व्यक्ति को अपने अहंकार का पता चल जाता है, वो अहंकार के साथ में ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकता। वो अहंकार तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, वो चला जाएगा। जैसे वो विदेश का एक दार्शनिक है गुरजीव, उसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, इज अ वेरी ग्रेट थिंकर। वो एक बार एक गांव से जा रहा है तो किसी ने आकर उसको गालियां देना चालू कर दी, 2-3 लोगों ने मिलकर। तो वो कुछ भी नहीं बोला, चुप, लोगों को आश्चर्य, क्योंकि गालियों का तो जवाब हम तुरंत देते हैं, दोष किसने लगाया तो हम तुरंत स्पष्टीकरण देते कि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरा नहीं। उसने कहा मैं आपको कल बताऊंगा, तो बोलते कल, ये बड़ी अजीब आदमी है, तो कल बताओगे हमारी गालियों का उत्तर? तो बोले मैं पहले जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा और सोचूंगा कि तुम लोगों ने जो कुछ मेरे बारे में कहा वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो मैं परिवर्तन करूंगा, अगर गलत है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर वो चला जाता है। दूसरे दिन आता है और कहता है कि आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा ना वो सब सही है, जो भी गालियां दी, जो भी मुझ में दोष बताए वो सब राइट है, अभी मैं आज से प्रयत्न करूंगा उससे मुक्त होने का। तो ये रियलाइजेशन कि मुझ में ये विकार है, ये भाव है, ये संस्कार है, ये भावना है, इस तरह के बोल है, जो भी छह बातें बताई, उसका रियलाइजेशन ये धीरे धीरे उससे मुक्त कर देगा। तो अच्छा, ओम शांति।
यज्ञ में रहने ज्यादा समर्थ